हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दक्ष को किसी भी हाल में ध्रुव और मेहर की शादी को रुकवाना था। अब तो वो ये बात भी जान चुका था कि ध्रुव और तारा के बीच किसी तरह का इमोशनल कनेक्शन बन गया है। ध्रुव ने उससे मेहर को छीना था, तो वो उससे बदला लेने के लिए कब से ताक में बैठा था। ऊपर से उसे मेहर और ध्रुव की शादी भी तोड़नी थी। दक्ष ने अपना दाव चलते हुए पहले कृषा को मैनिपुलेट किया। हालांकि उसके पास याशी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने याशी को किडनैप कर लिया है। उसने कृषा को बीच शादी से अपने पास आने पर मजबूर कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ उसने तारा को कॉल करके ये कह दिया कि वो मुसीबत में है। उनके बीच कितने भी बुरे रिश्ते क्यों ना हों, तो क्या वो अपने भाई को बचाने के लिए नहीं आएगी? तारा सब कुछ छोड़ छाड़ कर दक्ष की लोकेशन निकालकर उसे बचाने के लिए चली गई। वहीं राणा मेंशन में अपने कमरे में मौजूद कृषा के पास जब दक्ष का कॉल आया और उसने उसे बुलाया, तो वो रोते हुए जमीन पर बैठ गई थी। युग युग, आई नीड यू। हमारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हें बता नहीं सकती। मैं तुम्हारी जितनी स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन मैं मर भी जाऊंगी तब भी अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कृषा ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा। वो कमजोर जरूर हो रही थी, लेकिन फिलहाल उसे याशी को बचाना ज्यादा जरूरी था। कृषा बिना कुछ सोचे समझे बेहाल हालत में नीचे आई। उसने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से कवर कर रखा था। नीचे काफी भीड़ और रौनक लगी हुई थी। इस बीच उसकी नज़र युग और ध्रुव के ऊपर गई। उन्हें देखकर कृषा की आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। शादी की रस्में 10 मिनट में लगभग शुरू होने ही वाली थी। मेहर की एंट्री हो रही थी। उसने डार्क मेरी कलर का शादी अजोड़ा पहना हुआ था। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मेहर एक मॉडर्न दुल्हन की तरह तैयार हुई थी, जिसमें ऑफ शोल्डर लॉन्ग स्लीव्स का ब्लाउज पहना था। मिनिमल मेकअप और मिनिमल डायमंड ज्वेलरी के साथ वो अच्छी लग रही थी। मैं तुम्हारी खुशियां बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ ध्रुव। आई नो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और तुम हमेशा मुझे अपने आसपास चाहते हो, लेकिन फिलहाल याशी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, कृषा ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी भी इधर उधर देखते हुए कृषा के आने का इंतज़ार कर रहा था। ध्रुव के चेहरे पर बेचैनी देखकर युग ने उसका कंधा सहलाया और बोला, वो तैयार होने के लिए गई है, थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगी। हाँ, लेकिन अचानक मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, शायद ये सब कृष की बातों की वजह से हुआ है। वो अपने बचपने में कुछ भी कह जाती है, लेकिन मैं परेशान हो जाता हूँ, ध्रुव ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। युग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कृषा के बिना वो भी थोड़ा परेशान हो रहा था। युग ने ध्रुव को वहीं पर छोड़ा और ऊपर कृषा के पास जाने लगा, तो वहीं कृषा वहां से गाड़ी लेकर निकल गई थी। युग कृषा के पास ऊपर अपने फोर्थ फ्लोर पर पहुंचा। अंदर आते ही वो तेज आवाज में कमरे में आते हुए बोला, कृष, अगर तुम ठीक से तैयार नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन सा हमारी शादी हो रही है। तुम अगर नीचे कैजुअल्स में भी आओगी तो मुझे अच्छी ही लगेगी, दूसरे कुछ भी कहें क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम मेरे लिए ही तैयार हो रही हो। कृषा की तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर युग के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। उसने एक झटके में कमरे का दरवाजा खोला तो कृषा वहां नहीं थी। हाँ, उसका मोबाइल जरूर जमीन पर गिरा हुआ था। कृषा ने जानबूझकर अपना मोबाइल वहां पर छोड़ा था, ताकि अगर युग या ध्रुव उसे ढूंढते हुए बजट आए तो वो दक्ष का मैसेज देखकर उसके पीछे आ सकें। अंदर कृषा को ना देखकर युग ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो गहरी सांस लेकर बोला, तुम बिल्कुल ठीक हो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। मोबाइल उठाने से कमरे में आने तक ना जाने युग का दिल कितनी बार बेचैनी से थम चुका था। उसने जल्दी से फोन उठाकर चेक किया तो दक्ष का मैसेज खुला हुआ था। अपनी बेटी याशी राणा की सलामती चाहती हो तो इस लोकेशन पर पहुंच जाना, और गलती से भी अपने पति और बेटे को बताने की गलती मत करना। मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ कृषा राणा, अगर वहां पर तुम युग और ध्रुव के साथ में आई तो तुम्हारी बेटी की लाश तक देखना नसीब नहीं होने दूंगा। जैसे जैसे युग दक्ष का मैसेज पढ़ रहा था, उसकी आंखें बेहद लाल होने लगी थी। गुस्से में उसकी मुट्ठी भींच रही थी। मैसेज पढ़ने के बाद युग ने अपने मोबाइल में लोकेशन सेव की और कृषा के मोबाइल को फेंक दिया था। युग ने उसी वक्त तुरंत मलिक को कॉल किया। वो बेहद सख्त आवाज में बोला, यश कहाँ है मलिक, मेरी बात करवाओ उससे। क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? युग की आवाज से ही मलिक समझ गया था कि कोई गड़बड़ है। यश से बात करवाओ, मुझे उसका चेहरा देखना है, युग ने अपनी बात को बिना किसी भाव के दोहराया। मलिक ने तुरंत कॉल को वीडियो कॉल में कन्वर्ट किया और फिर याशी का चेहरा दिखाया, जो इस वक्त ड्राइंग करने में लगी हुई थी। याशी को ठीक देखकर युग ने कहा, अपनी लोकेशन की सिक्योरिटी टाइट कर लो, जब तक मैं ना आऊं यश की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। इतना कहकर युग ने कॉल कट कर दिया। वो गुस्से में तेज सांसें ले रहा था। युग नीचे जाते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, तुम जो भी हो, गलत इंसान को टारगेट किया है। क्रिश के इमोशंस के साथ खेलने की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, पर दुआ करना उसके एक छोटी सी खरोच भी ना आए, वरना तुम्हारे शरीर पर लगे जख्मों को ये डेविल गिनने लायक भी नहीं छोड़ेगा। युग सीधा नीचे आया। मंडप में ध्रुव और मेहर एक साथ बैठे थे और उनकी शादी की रस्में शुरू हो गई थीं। क्रिशा के नीचे न आने पर ध्रुव परेशान हो रहा था और अब तो युग भी चला गया था। क्रिश से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। डैड तो शादी में नहीं आने भी वाले थे, लेकिन अब क्रिश गायब है। डैड उन्हें बुलाने गए थे, लेकिन जरूर उनके साथ कहीं चले गए होंगे, ध्रुव खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। तभी उसकी नजर युग के ऊपर गई, जो बेहद सर दौरा के साथ सीधे मंडप की तरफ आ रहा था। राणा फैमिली के लोग युग की तरफ हैरानी से देख रहे थे। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो ठीक नहीं था। शब्द उसे रोकने के लिए उसके पास आता, उससे पहले युग ध्रुव के पास पहुंच चुका था। युग ध्रुव के पास झुकते हुए उसके कान में बोला, किसी ने क्रिश को ट्रैप किया है, वो भी याशी का नाम लेकर। जो भी है वो जान चुका है कि यश मेरी और क्रिश की बेटी है। यश बिल्कुल ठीक है, मैंने मलिक से बात कर ली, लेकिन क्रिश खतरे में है ध्रुव, हमें अभी निकलना होगा। जैसे ही युग ने ध्रुव को सब बताया, उसके चेहरे के भाव भी सख्त होने लगे। जहां एक तरफ मिस्टर प्रतीक रायचंद मेहर का हाथ ध्रुव के हाथ में देने वाले थे, वहीं ध्रुव ने मेहर का हाथ झटक दिया और तुरंत वहां से खड़ा हो गया था। वो बिना कुछ बोले युग के साथ बाहर की तरफ बढ़ रहा था। तुम मुझे इस तरह बीच शादी से छोड़कर नहीं जा सकते हो ध्रुव राणा, शादी के लिए तुमने प्रपोज किया था। अगर आज तुम गए तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी, इसकी सजा भी तुम्हें चुकानी होगी। मतलब समझते हो ना कि मुझसे शादी ना करने का क्या मतलब होगा, मेहर पीछे से जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। ध्रुव का इस तरह बीच शादी से उठकर जाना उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अभी भी इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी कि उनके पास तीन पड़ाव हैं। ध्रुव के कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। आखिर बात कृषा की थी। अगर मेहर सच में तीन पड़ाव की मालिकिन होती तब भी ध्रुव वहां नहीं रुकता। अगले ही पल युग और ध्रुव साथ में गाड़ी में थे। युग गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो वहीं ध्रुव पीछे बैक सीट पर कपड़े चेंज कर रहा था।
दोनों बिल्कुल शांत थे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के ही एक तूफान चल रहा था। चेंज करने के बाद ध्रुव फ्रंट सीट पर आ गया था। वो रिवॉल्वर निकालकर उनमें गोलियां भरने लगा। आपने हमारे आदमियों को लोकेशन भेजी? ध्रुव ने युग की तरफ देखकर पूछा। हाँ, नीचे आने से पहले मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था, युग बोला। इसके बाद वो बिल्कुल चुप हो गया था। ध्रुव ने युग के चेहरे की तरफ देखा। भले ही वो गुस्से में शांत हो, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। युग चिल्लाना चाहता था, पर वो शांत था। ध्रुव ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो युग जोर से चिल्लाते हुए बोला, हर बार सबको उसे क्यों टारगेट करना होता है? अगर लड़ाई मुझसे है तो आकर मेरा सामना करें। जब जब लोगों को मुझे कमजोर करना होता है वो क्रिश को टारगेट करते हैं, उसे तकलीफ देते हैं ताकि मुझे और तकलीफ महसूस हो। मैं आपकी इमोशन से समझ सकता हूँ, और इस वक्त मेरे दिल में भी यही चल रहा है। क्रिश को एक बार हमें बता देना चाहिए था। उन्होंने कैसे सोच लिया कि हम एंजल की सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा भी बेपरवाह हो सकते हैं? मलिक अंकल खुद उनके साथ हैं। आज तक उन्होंने आपको एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट किया है, और अब वो याशी के साथ हैं तो फिर उसे कैसे कुछ हो सकता है? ध्रुव ने जवाब में कहा। वो तकलीफ में है, उसे पता नहीं कि याशी ठीक है। अगर उसकी जगह तुम या मैं होते तो भी किसी को नहीं बताते और सीधा याशी को बचाने के लिए निकल जाते। वो जो कोई भी है, उम्मीद है कि उसका काम सिर्फ मैनिपुलेशन और कुछ पैसों तक ही सीमित हो, वरना अगर उसने क्रिश को कुछ भी किया तो आई स्वेयर मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगा, युग गुस्से में दांत पीसते हुए बोला। बदकिस्मती से वो लोकेशन काफ़ी दूर थी। युग बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था, फिर भी उन्हें पहुंचने में टाइम लग रहा था। तो वहीं क्रिशा उस जगह पर पहुंच चुकी थी। दक्ष के आदमियों ने वहां अच्छी खासी सिक्योरिटी कर रखी थी। क्रिशा के आते ही वो उसे अंदर लेकर गए। अंदर जाते ही क्रिशा ने दक्ष को देखा, जो एक काउच पर बैठा हुआ था। इस वक्त उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसे किसी ने बहुत पीटा हो। क्रिशा आते ही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दक्ष किसी साइको की तरह हंसते हुए बोला, मुझे इस तरह मत देखो, हैरानी हो रही होगी कि मेरी ये हालत किसने की। तो तुम्हें बता दूं कि अभी तो मेरा गेम शुरू हुआ है। तुम्हारी फैमिली की जिंदगी बर्बाद करके नहीं रखा तो मेरा नाम भी दक्ष मल्होत्रा नहीं। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? याशी तो बहुत मासूम है, कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे जाने दो, क्रिशा ने सुबकते हुए कहा। अब तक तुम्हारे बारे में सुना ही था, लेकिन आज पता भी चल गया कि तुम बहुत मासूम हो। पर इतनी मासूमियत भी क्या काम की? जिसका पति माफिया किंग हो और बेटा माफिया किंग बनने जा रहा है, उसकी माँ किसी की बातों में इतनी आसानी से आ जाए? वैसे तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी बेटी मेरे पास नहीं है। क्या तुम्हें अपने पति पर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट रखेगा कि किसी के साए तक को उसके पास पहुँचने नहीं देगा? दक्ष ने कृषा को सब सच बता दिया था। याशी बिल्कुल ठीक थी, ये जानकर कृषा ने राहत की सांस ली। लेकिन साथ ही वो समझ गई थी कि दक्ष का टारगेट कृषा थी। वो हैरानी से दक्ष की तरफ देखने लगी।
दक्ष बोला, तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये बात तो जरूर चल रही होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो उसकी सीधी सीधी वजह तुम्हारा बेटा ध्रुव राणा है। जिस लड़की को इतने साल से मैं पाने की कोशिश कर रहा था, उसने एक झटके में उसके साथ सगाई कर ली और अब शादी करने जा रहा है। माफिया के साथ पड़ाव तुम लोगों के पास है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को बाकी के 3 पड़ाव चाहिए, जो कि मैं हमेशा से हासिल करना चाहता था। इतना लालच अच्छा नहीं है, ये उन्हें तुम्हारी लाश देखकर समझ आ जाएगा। उसकी बात सुनकर अचानक कृषा हंसने लगी। वो बोली, और तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने के बाद तुम कितने घंटे जिंदा रह पाओगे दक्ष मल्होत्रा? ठीक है, मैं तुम्हारी बातों में आ गई क्योंकि मुझे अपनी बेटी की फिक्र थी, उसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन तुम तो खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो, तुम्हारी अकल कहाँ गई? ये तक नहीं सोचा कि अगर मुझे कुछ करोगे तो बाद में वो दोनों तुम्हें सांस लेने लायक नहीं छोड़ेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, वैसे भी उनका निशाना कोई और होगी, मर भी जाऊंगा तो खुशी होगी कि मैंने उन दोनों की जिंदगी उनसे छीन ली, दक्ष पागलों की तरह हंसते हुए बोला, और उसने कृषा के पास जाकर उसका गला पकड़ लिया था। कृषा का दम घुट रहा था, वो दक्ष से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। खुद को बचाने के लिए कृषा ने भी दक्ष का गला पकड़ रखा था। इस बीच तारा वहां पहुंच चुकी थी। कृषा का ध्यान तारा की तरफ नहीं गया, लेकिन तारा को देखते ही दक्ष जोर से चिल्लाकर बोला, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी। कृषा दक्ष के चिल्लाने का कारण नहीं समझी। अचानक दक्ष ने कृषा को नुकसान पहुंचाना भी छोड़ दिया था, लेकिन कृषा अभी भी दक्ष का गला पकड़े हुए थी। तारा के हाथ में रिवॉल्वर थी और उसने दक्ष को बचाने के लिए बिना सोचे समझे कृषा की कमर पर और फिर दूसरी गोली उसके पीछे साइड कंधे के नीचे चलाई थी। हालांकि तारा का इंटेंशन सिर्फ कृषा को रोकने का ही था, लेकिन जैसे ही कृषा दूसरी तरफ पलटी, उसका चेहरा देखकर तारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। सिर्फ तारा ही नहीं, वहां इस वक्त उसके पीछे ध्रुव और युग भी खड़े हुए थे, जिन्होंने तारा को कृषा को शूट करते हुए देख लिया था। दक्ष का प्लान तारा के हाथों कृषा की जान लेना था, लेकिन पीछे युग और ध्रुव के आ जाने से उसके प्लान में 4 चांद लग गए थे और वो किसी साइको की तरह मुस्कुरा रहा था।